ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा में कल PSLV-C60 से प्रक्षेपण के तुरंत बाद दो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। अब इसरो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर विभिन्न विज्ञान प्रयोगों के लिए 24 गैर पृथक पेलोड को सक्रिय करेगा। डॉकिंग और अनडॉकिंग में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला ये मिशन भारत के भविष्य के मिशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेडेक्स मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि रॉकेट ने उपग्रहों को सही कक्षा में स्थापित कर दिया है और POM संचालन को सक्षम करने के लिए प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रक्षेपण में शामिल लोगों को बधाई देते हुए अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि मिशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा POEM-4 है, जिसमें इसरो DOS केंद्रों से 14 पेलोड हैं और 10 पेलोड विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं NGE से हैं, जिनमें अकादमिक और स्टार्टअप शामिल हैं जो IN स्पेस के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कल 2,867 करोड़ रुपए के दो समझौते किए। ये समझौते रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग के निर्माण और इसे भारतीय पनडुब्बियों तथा कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हैवीवेट टॉर्पीडो से जोड़ने के लिए किए गए हैं। दोनों अनुबंधों पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में बजट पूर्व परामर्श के अंतर्गत छठी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इससे पहले वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नवनियुक्त गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 2025 में भारत के आर्थिक परिदृश्य के बारे में आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है। दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की प्रस्तावना में श्री मल्होत्रा ने कहा कि मुद्रास्फीति घटने की उम्मीद है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और रिजर्व बैंक को आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कल वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन के वार्षिक समारोह के समापन अनुष्ठान में भाग लिया। श्री शाह कल अहमदाबाद से धर्मपुर पहुंचे और इस धार्मिक समारोह में शामिल हुए। समारोह में गुजरात के वित्त और ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई और गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहे। सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के उद्देश्य से भारत नेपाल सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण आज से रूपंदेही के सलझंडी में शुरू हो रहा है। सूर्य किरण नामक बटालियन स्तर का संयुक्त सैन्य अभ्यास जंगल युद्ध, कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकवाद का मुकाबला, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार शांति मिशन की स्थापना, आपदा प्रबंधन और आंतरिक क्षमता निर्माण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन, कालिंदी कुंज, शाहीनबाग और सरिता विहार जैसे कई इलाकों से 12 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इन सभी अप्रवासियों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया है। दक्षिण पूर्व जिला के उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने करीब 1200 लोगों का सत्यापन किया है और भविष्य में भी इस संबंध में जानकारी मिलने पर जांच की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इनकी पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल ठंड और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ एक जगहों पर रात और तड़के घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।